नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा पर बातचीत की। ईरान ने इसराइली हमलों में रक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिज फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि की। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए 1100 से अधिक केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए। केरलम में 3 प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद चुनाव प्रचार तेज। समान नागरिक संहिता के लिए उच्च स्तरीय समिति ने गुजरात सरकार को अंतिम मसौदा रिपोर्ट सौंपी और आकर्षी कश्यप फ्रांस में ऑलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा। दोनों नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति भी जताई। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं। ईरान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय रक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिज फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी की इसराइली हमले में मौत हो गई है। लारिजानी को अमरीका और इसराइल के खिलाफ जारी संघर्ष में तेहरान के प्रमुख लोगों में गिना जाता था और वे सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई तथा उनके बेटे मुज्तबा के करीबी माने जाते थे। ये पुष्टि उस समय हुई है जब इसराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों, जिनमें लारिजानी भी शामिल हैं, को एक हमले में मार गिराया है। ये हमला जारी संघर्ष के बीच ईरान के नेतृत्व को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया था। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कतर एयरवेज ने कल भारत के लिए 5 उड़ानें संचालित की, जिनमें 1600 से अधिक भारतीय नागरिकों को लाया गया। दूतावास ने बताया कि एयरलाइन आज से भारत के 9 शहरों के लिए उड़ान सेवाओं का विस्तार भी करेगा। दूतावास द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि कतर के अधिकांश हवाई क्षेत्र बंद हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे टिकट केवल आधिकारिक माध्यमों जैसे एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या अधिकृत ट्रैवल एजेंट के जरिए ही बुक करें। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया के लिए 50 निर्धारित और विशेष उड़ानें संचालित करेगी। इनमें से 26 निर्धारित और 24 विशेष उड़ानें शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अधिकांश नाटो सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य अभियान में शामिल होने से इंकार कर दिया है। उन्होंने नाटो गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को विदेशी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों की अस्वीकृति के बावजूद लगभग हर देश अमरीका की कार्यवाही से पूरी तरह सहमत है और ईरान को किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनका देश होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा के लिए सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन ये अभियान पश्चिम एशिया में व्याप्त मौजूदा संघर्ष से अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान के लिए ईरान के साथ बातचीत और तनाव कम करना आवश्यक होगा और ये जारी सैन्य अभियानों से पूरी तरह अलग होना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की और एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमरीका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच रूस द्वारा यूक्रेन पर हमलों से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने की आशंका जताई जा रही है। इस रक्षा साझेदारी का उद्देश्य कम लागत वाले उच्च तकनीक संपन्न सैन्य उपकरणों के प्रसार के खिलाफ वैश्विक रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। लोकसभा में आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। सदन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान निर्धारित है। कल शाम लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में रेलवे क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं और क्षेत्र के सभी पहलुओं पर काम किया है। इस बीच संसद ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल हुई चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। ये विधेयक वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से अतिरिक्त धनराशि के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करता है। राज्यसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि केंद्र सरकार आर्थिक स्थिरीकरण कोष के लिए लगभग 57,382 करोड़ रुपए दे रहा है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा अन्य 6 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोहराया है कि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त होगी, जिससे प्रत्येक मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सके। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1,111 पर्यवेक्षकों में से 557 सामान्य पर्यवेक्षक, 188 पुलिस पर्यवेक्षक और 366 व्यय पर्यवेक्षक हैं। आयोग ने बताया ये अधिकारी चुनावी प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे। सामान्य पर्यवेक्षक मतदान के समग्र संचालन की देखरेख करेंगे, पुलिस पर्यवेक्षक कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे, जबकि व्यय पर्यवेक्षक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव खर्च पर कड़ी निगरानी रखेंगे। आयोग ने कहा ये पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करेंगे, ताकि आदर्श आचार संहिता और चुनाव दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। पर्यवेक्षकों को आज तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने और तुरंत अपना कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस अवधि के दौरान शिकायतों का शीघ्र निवारण और पारदर्शिता प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
केरलम में 3 प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद चुनाव अभियान तेज हो गया है। चुनाव प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों को के आज राज्य पहुंचने का कार्यक्रम है, जबकि व्यय पर्यवेक्षक पहले ही राज्य में पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है। आधिकारिक घोषणाओं से पहले ही कई क्षेत्रों में अनौपचारिक चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था। इससे पहले एलडीएफ और एनडीए ने अपनी पहली सूचियां जारी कर दी थी। कल शाम यूडीएफ के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस की इस सूची में 19 मौजूदा विधायक शामिल हैं। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन एक बार फिर परवूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीपीआईएम ने रविवार को जारी अपनी सूची में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत 56 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने सोमवार को 47 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को शामिल किया गया है। स्मृति एस पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
गुजरात में समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल गांधीनगर में अंतिम मसौदा रिपोर्ट सौंपी। मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित है। सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए समान नागरिक और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य की अनूठी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली समिति ने गुजरात के विभिन्न जिलों में व्यापक अध्ययन और लोगों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र निरसन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत 80 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। इसमें 1825 का बंगाल विनियमन और बॉम्बे आबकारी अधिनियम भी शामिल है। इसके अलावा 24 बॉम्बे अधिनियम, 8 मध्य प्रांत और बरार अधिनियम, 18 हैदराबाद अधिनियम, 3 मध्य प्रदेश अधिनियम, 24 विनियोग अधिनियम सहित अन्य कानून भी निरस्त हो गए हैं। सिक्किम प्रेरणा स्थल का आज बरदांग में उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस समारोह में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, ब्लैक कैट डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एमएस राठौर और सिक्किम पुलिस के डीजीपी अक्षय सचदेव उपस्थित होंगे।
वर्ष 2026 में बारदांग को सिक्किम के प्रवेश द्वार के रूप में मान्यता देते हुए एक विस्तारित स्मारक परिसर सिक्किम प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ये स्मारक सिक्किम तथा पूरे देश के उन वीरों को बलिदान समर्पित है। ये स्मारक सिक्किम के शहीदों तथा देश भर के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने सिक्किम में सेवा के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ आगंतुकों के लिए रणभूमि एबी टोल विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य युद्धभूमि पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत डोकाला और चोला जैसे स्थानों को भी पर्यटन स्थल के दौरान विकसित किया जा रहा है। मानोश प्रतिम शर्मा के साथ मैं मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक से।
ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत के आकर्षी कश्यप ने अपने दोनों क्वालिफाइंग मैच जीतकर महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। फ्रांस के पैलेस डे स्पोर्ट्स में खेले गए टूर्नामेंट में आकर्षी ने पहले क्वालिफाइंग में श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराया। इसके बाद चीनी ताइपे की ली ह्यू ह्यूसान को हराया। किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी, मालविका बंसोड, अनमोल खर्ब और तन्वी शर्मा आज बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और विदर्भ में ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में आज बिजली गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
धन्यवाद लवलीन। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के नशा मुक्ति अस्पताल पर किए गए हवाई हमलों को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। भारत द्वारा इस हमले की कड़ी निंदा को अमर उजाला ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि ये कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य है। हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि कोई भी मजहब और नैतिकता किसी अस्पताल तथा उसके मरीजों को जानबूझकर निशाना बनाने को उचित नहीं ठहरा सकती। लोकसभा के पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन को समाप्त करने के फैसले पर दैनिक जागरण ने लिखा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से संसदीय लक्ष्मण रेखा का पालन करने पर सहमति बनी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि किसी भी उम्र का बच्चा गोद लेने पर मातृत्व अवकाश मिलेगा, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका कहता है उम्र की शर्त को शीर्ष न्यायालय ने बताया संविधान के खिलाफ। देश को मार्च के अंत तक नक्सलवाद मुक्त बनाने की सरकार की मुहिम पर दैनिक भास्कर ने लिखा है अब नक्सलवाद की वैचारिक जड़ों पर होगी कार्रवाई। पत्र के अनुसार 5 मोर्चों पर की जाएगी कार्रवाई।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा पर बातचीत की। ईरान ने इसराइली हमले में रक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिस फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि की। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए 1100 से अधिक केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए। 3 प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद केरलम में चुनाव प्रचार तेज। समान नागरिक संहिता के लिए उच्च स्तरीय समिति ने गुजरात सरकार को अंतिम मसौदा रिपोर्ट सौंपी। और आकर्षी कश्यप फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।